ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद के दोनों सदनों से बहुमत से हुए पारित। सहकारी प्रकरण में संसदीय छानबीन समिति बनाने के विषय में कल तक दलों के बीच सहमति जुट जाने का प्रधानमंत्री प्रचंड ने जताया विश्वास। संघीय संसद की संयुक्त बैठक में परसों दोपहर 1 बजे आगामी आर्थिक वर्ष का सरकार का बजट होगा पेश। चालू आर्थिक वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर 3.9% होने का अर्थ मंत्रालय का है अनुमान। सरकारी अरियर अमाउंट का आकार 11,83,00,000,000 पहुंच चुका है, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। और पपुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को हुए भयंकर भूस्खलन में 670 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो गए। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर विमर्श के दौरान उठे सवालों के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, रोजगारी सृजन और विकास पर जोर दिया गया है। इस बात का जिक्र करते हुए कि सहकारी प्रकरण में संसदीय छानबीन समिति बनाने के विषय में राजनीतिक पार्टियां सहमति के नजदीक हैं, प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आज कल में ही सहमति हो जानी चाहिए। बता दें कि बैठक शुरू होते ही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने अवरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन विरोध के बीच अर्थमंत्री वर्षमान पुन ने 2080-81 के आर्थिक सर्वेक्षण और सार्वजनिक संस्थानों की समीक्षा रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के समग्र आर्थिक परिसूचक में सुधार होता गया है और देश का अर्थतंत्र 3.9% से विस्तार होने का अनुमान है। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की अलग अलग बैठकों में अर्थमंत्री पुन ने चालू आर्थिक वर्ष का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। बता दें कि परसों जेठ 15 गते दोपहर 1 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का बजट प्रस्तुत होगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक जेठ 15 गते शाम 4 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल के समक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपना 61वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक तोयम राया ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। प्रतिवेदन के मुताबिक सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था एवं अन्य संस्था, समिति, प्रादेशिक निकायों और स्थानीय तहों का समग्र अरियर अमाउंट 11,83,00,000,000 रूपये से अधिक पहुंच चुका है। मौके पर राष्ट्रपति पोर्टल ने विश्वास जताया कि संविधान और कानून द्वारा दिए गए अपने अधिकारों और दायित्वों का पालन करते हुए महालेखा परीक्षक कार्यालय देश में आर्थिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्वों, पारदर्शिता और निष्ठा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के बीच देउवा के आवास बूढ़ा नीलकंठ में भेंटवार्ता हुई। आज सुबह हुई भेंट में उनके बीच संसद के अवरोध का अंत करने के विषय में बातचीत हुई थी। विचार विमर्श में प्रधानमंत्री प्रचंड ने सहकारी प्रकरण में छानबीन समिति बनाने के विषय में खुद को बेहद गंभीर बताते हुए कल तक सहमति बनाने का आग्रह किया था। ये बात कांग्रेस के सह महामंत्री जीवन परियार ने बताई। बता दें कि आज सुबह नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केन्द्र के 3 शीर्ष नेताओं की बालवाटार में भेंटवार्ता के कार्यक्रम थे, लेकिन स्वास्थ्य को कारण बताते हुए सभापति देउवा ने असमर्थता जताई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रचंड बूढ़ा नीलकंठ गए, हालांकि अध्यक्ष ओली वहां नहीं जा सके। गौरतलब है कि नेपाली कांग्रेस सहकारी मामले में उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामी छाने पर भी छानबीन करने के हिसाब से उनका नाम उल्लेख करके ही संसदीय समिति बनाने की मांग करती आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष गृहमंत्री लामी छाने का नाम न रखने की अड़ान पर है। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने संसद गतिरोध समाप्त करने के संबंध में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का ध्यान आकृष्ट किया। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री निवास बालवाटार पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने संसद के गतिरोध का अंत करने के संबंध में ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा। सहकारी ठगी मामले में उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामी छाने की संलिप्तता के ऊपर जांच करने के लिए संसदीय समिति गठन की मांग करते हुए सदन में लगातार विरोध करती आ रही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने आज से सड़क आंदोलन शुरू किया है। पहले चरण में काठमांडू घाटी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से लोग सहभागी हुए और भ्रिकुटी मंडप में सभा का आयोजन किया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बिना मौजूदा सरकार अल्पमत में पड़ जाएगी, इसलिए सरकार को टिकाने के लिए ही उप प्रधानमंत्री लामिझाने के नाम को जोड़कर सरकार संसदीय छानबीन समिति का गठन नहीं करना चाहती। महामंत्री शर्मा ने आगे कहा कि सहकारी मामले में नेकपा एमाले के बहुत से नेता कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, इसलिए एमाले भी जांच समिति गठन के पक्ष में नहीं है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने अगले कुछ दिनों तक तराई इलाकों में भीषण गर्मी की संभावना जताते हुए सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। महाशाखा ने आज गर्मी और लू के संबंध में एक विशेष बुलेटिन प्रकाशित करते हुए ऐसा अनुरोध किया। गर्म हवा और लू के कारण थकान, कमजोरी, अत्यधिक प्यास, सिरदर्द, पैर में ऐंठन, चक्कर आना, बेहोशी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आदि समस्याएं होती हैं। गर्म हवा और लू से बचने के लिए तेज गर्मी के दौरान घर के अंदर या ठंडी जगह पर रहने, ज्यादा बाहर न जाने, धूप में ज्यादा न घूमने, हल्के और सूती कपड़े बाहर जाते समय अपना सिर ढकने, खूब पानी और शीतल पेय पीने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क में रहने का महाशाखा ने अनुरोध किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने शांति प्रक्रिया के बाकी कामों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की बात पर जोर दिया है। 22वें कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के मार्फत शांति प्रक्रिया के बाकी काम पूरे किए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि संसद में प्रतिपक्ष की आवाज को जगह मिलनी चाहिए। नेपाल प्रेस यूनियन के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने कहा कि सत्ता गठबंधन का व्यवहार निरंकुश है। स्वास्थ्य सेवा विभाग की बाल स्वास्थ्य तथा वैक्सीन शाखा ने पोलियो विरुद्ध आईपीवी वैक्सीन बच्चों को लगाने का अभिभावकों से आग्रह किया। आज से देशभर के बच्चों को आईपीवी वैक्सीन लगाना सरकार ने शुरू किया है। ये जानकारी बाल स्वास्थ्य तथा वैक्सीन शाखा के प्रमुख डॉ अभियान गौतम ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि पपुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को हुए भयंकर भूस्खलन में 670 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पपुआ न्यू गिनी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के प्रमुख सिरहान आक्तो प्राक ने कहा कि शुक्रवार को देश के सुदूर एनगा प्रांत में आए भूस्खलन से हुई तबाही अनुमान से कहीं अधिक है। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित द्वीप है और भूस्खलन से प्रभावित इलाके इसके उत्तर में एनगा प्रांत के ऊंचाई वाले इलाके में है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में करीब 4000 लोग रहते हैं, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई केयर ऑस्ट्रेलिया एजेंसी का मानना है कि यह संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी क्षेत्रों में आदिवासी संघर्ष से बचकर बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आ गए थे। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 1000 लोग विस्थापित हुए हैं। ये भूस्खलन शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार 3 बजे यानी जीएमटी के समयानुसार शाम 5 बजे गुरुवार को हुआ, जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद के दोनों सदनों से बहुमत से हुए पारित। सहकारी प्रकरण में संसदीय छानबीन समिति बनाने के विषय में कल तक दलों के बीच सहमति जुट जाने का प्रधानमंत्री प्रचंड ने जताया विश्वास। संघीय संसद की संयुक्त बैठक में परसों दोपहर 1 बजे आगामी आर्थिक वर्ष का सरकार का बजट होगा पेश। चालू आर्थिक वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर 3.9% होने का अर्थ मंत्रालय का है अनुमान। सरकारी अरियर अमाउंट का आकार 11.83 खरब पहुंच चुका है, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। और पपुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को हुए भयंकर भूस्खलन में 670 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।